विश्वनाथ चक्रवर्ती साधु जी ने इसकी संस्कृत में टीका है, इसी से मैं कल बतला रहा था जी चैतन्य महाप्रभु के अवदान का वैशिष्ट में कहा था। जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी आचार्य लोग आए हैं, सबकी कृपा को थोड़ी कूद कर और अपना अधिकतर वैशिष्ट रखते थे, जगत को वो चीज दिया जो पहले एक कल पहले जो उन्होंने दिया था, इसके बीच में नहीं दिया। इसलिए चरण चिराग चिराग मैंने कभी नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया था। बहुत कालीन काल में वो नष्ट हो गया था। साधु भट्टाचार्य जी महाप्रभु की वंदना करते थे। कल उनके संबंध में, कृपा के संबंध में मैंने कुछ बतलाया। स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम मैंने अपनी भक्ति की संपत्ति, जिसके द्वारा ब्रज प्रेम को अपने हृदय में लाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। और स्वभक्ति श्रियम का यह भी बताया जो राधा जी की जो स्वयं अपनी भावनाएं भाव है, उसकी शोभा के उसी की पिछले विश्वनाथ चक्रवर्ती श्री ठाकुर जी इस रूप में बतला रहे। श्रीमद भागवत के दशम स्कंद के एक श्लोक में भी उन्होंने कुछ कुछ हिस्सा सोचे। इसके पहले महाप्रभु जी की करुणा के संबंध में श्री नरोत्तम ठाकुर जी अपने हृदय की अभिव्यक्ति करते हैं। गौर ब्रज जने भेद नाही, भरज भाष धानेर स्वरूप स्फुरी ने नये अब राधा रकाश करें। गौर ब्रज जने भेद नाही, जो लोग गौर और ब्रज को एक समझते हैं, अभिन्न गौर को प्रच्छन्न वृंदावन मिला है, अभिन्न वृंदावन है। तो गौर के जो भक्त हैं, परिकर हैं महाप्रभु जी के, और कृष्ण के जो परिकर हैं, इनको अभिन्न समझो, अलग अलग मत समझो। ये पुरुष रूप में है, ललिता भी चाहता है इत्यादि सदानंद रामानंद सभी के रूप में जो आए हैं, उनको एक देखो, इस चीज को समझो, उपलब्धि करो। हमारे खुद आचार्यों ने गौ गणोदेश इत्यादि और भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने अपने ग्रंथों में ये वर्णन किया है। तो कहते हैं गौर ब्रजजन है, भेद न करेगी, भेद मत देखना, अभिन्न देखना। हई देखो जो बात तुम गौर में है, तुम ब्रज के पर्वत, हई देखो जो बात धामेरा स्वरूप स्फुरी में नहीं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने नवदीप धाम परिक्रमा के लिए महाप्रभु छोटी सी पुस्तक लिखते हैं, महाप्रभु जी को दास रस में सेवा, उनको कृष्ण जैसे रासलीला इत्यादि के माध्यम से उनकी सेवा पत कर ले जाओ, इनको दशरथ से सेवा। जब दशरथ की पुष्टि होगी, इसमें सिद्धि होगी, तो ये राधा कृष्ण दोनों महाप्रभु जी राधा और कृष्ण दोनों के रूप में प्रतिबिंबित होने लगते हैं। रामानंद ने उनको खाली गौ में देखा, सन्यासी रूप में, फिर जब उनकी कृपा वर्षित हुई, ये तो राधा कृष्ण कौन ही बल्कि इससे और कुछ देखा, रसराज महाभाव के रूप में उनको देखा, यही उनका वैशिष्ट है। महाप्रभु जी को जैसे कृष्ण की आराधना करते हैं उसमें मत करते जाओ, महाप्रभु जी का आदेश पालन करो, नहीं तो बहुत नागरिक का दोष आ जाएगा। हमारे गोस्वामी ने बहुत नागरिक का विरोध किया है, गौ को ही नागरिक सजा कर स्वयं नागरिक बनना, ये गौ भक्ति के प्रतिकूल है। इसलिए उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसा करें। जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी अपने आप यह धाम ब्रज के रूप में उदित होगा, राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि के रूप में ब्रज के रूप में उदित होगा और महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में उदित होगा। क्या होगा? धन स्वरूप इस पुरी में नहीं हरि को भरे तो वासी यथार्थ में धाम कृष्ण धाम कृष्ण नाम ये कुछ अपराध का विचार करते हैं। अपराधियों के हृदय में यदि अंकुरित नहीं होते कृष्ण नाम या कृष्ण धाम अंकुरित नहीं होते कृष्ण नाम पर अपराधियों का विचार, नाम ले ले, नाम लेने से भी उसका भाव जो है अंकुरित नहीं होता। इसलिए बहुत से हमारे गोस्वामी लोग और से हमारे कृष्ण के भजन करने वाले बहुत दिनों तक यहाँ रह करके अंत में रसलापसा आस्वादन करने के लिए नदी धाम में गए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का आप लोगों ने सुना होगा, गोलकिशोर दास बाबा जी महाराज जी और हमारे सबसे महाप्रभु जी सब पर कृपा। कल मैंने बताया अपना मत चंडा जो सामने आया उसी को प्रेम दिया, पात्र भी दिया प्रेम दिया। इसी को विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर जी महाप्रभु जी का जन्म मिली में अपने महाप्रभु जी के कृपा को क्या बतलाया, प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा महाप्रभु जी का मंदिर उनकी कृपा को निरंकुश महाप्रभु जी का जन्म मिली बतलाया, जिसके उदय होने पर यदि महाप्रभु की कृपा हो नौ भक्ति का संचार होता है। नौ भक्ति माने नवीन नवीन जो ब्रज की भक्ति है वो और हमारा नौधा भक्ति, नौ माने नौ नौधा भक्ति, हृदय में जीवों की स्फूर्ति होती है और उस कृपा के होने के पहले ही जैसे वर्षा होने के पहले शीतल हवा बहने लगती है, उस शीतल हवा से जैसे चारों तरफ में ताप दूर हो जाता है, ऐसे भक्तों के हृदय में जो ताप है काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि का महापुरुष की कृपा होने के पहले ही संचरित होने के पहले वो सब दूर हो जाता है। और जैसे बहुत दूर में मरुभूमि में एक पेड़ सूख रहा हो तो ये हवा जब भी संचरित होने को होती है तभी उस विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उस मरुभूमि का एक पादप हूं, एक वृक्ष हूं जो सूख रहा हूं, गंध से गंध रस रहा हूं। महाप्रभु की कृपा ऐसी जो दूर से संचरित होने पर दूर से ही उस सूखे हुए वृक्ष में भी सरसता ला देती है, मैं ऐसी महाप्रभु जी की अमृत बरसाने वाली रस रूपी अमृत बरसाने वाली मधुर या रस को बरसाने वाली सरसाने वाली मैं उस निरंकुश कृपा को पुनः पुनः प्रणाम करता। निरंकुश कृपा क्या? कृष्ण ने एक शर्त लगाया, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजन्ते। सब जगह कुछ न कुछ शर्त है किंतु महाप्रभु जी की निरंकुश कृपा में कोई भी शर्त नहीं, उनके सामने बस जाना है, ये निरंकुश कृपा है। देखा करते हुए बतला रहे हैं एक श्लोक में श्रीमद् भागवत में बतला रहे हैं अक्षमतां फलमिदं न परम विधान सत्यु अनुदेश यतो वयस्य पत्रम प्रदेश तो अनुदेव दुष्टम दैवार अनुरोध कथा बड़ी सुंदर व्याख्या व्याख्या करते हैं। महाप्रभु की कृपा यदि न रही ऐसी सुंदर व्याख्या कभी किसी भी संप्रदाय के लोगों ने, हम समझते हैं कि हजारों लोगों ने टीकाएं और व्याख्याएं की हैं, किंतु बिना महाप्रभु के कृपा की ऐसी सुंदर व्याख्याएं कभी स्फूर्ति नहीं हो सकती। तो इस महाप्रभु जी की कृपा से सनातन गोस्वामी ने वैष्णव गोस्वामी जी गोस्वामी ने कोई संक्षिप्त वैष्णव गोस्वामी और यह सबका प्रसाद ग्रहण करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं मैं इन सब लोगों का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं झूठा जो पूछा रह गया। वैष्णव में कितनी दीनता होती है, दीनता का निदर्शन देखिए हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, कृष्ण कविराज गोस्वामी से हमारे उस समय के तदानंद वैष्णव ने रसिक वैष्णव ने उनसे प्रार्थना की। आप महाप्रभु जी की लीलाओं का सरस ग्रंथन किया कर उनकी इच्छा की, उसमें उनके पक्षों का भी चरित्र आ जाएगा, उनके परिक्रमों का भी आ जाएगा, इसे आप बना सकते। तो आदेश लेने के लिए सब वैष्णव के पास में गए जो उस समय उपस्थित थे। रूप सनातन जी तो उस समय नहीं थे और सब लोग नहीं थे, किंतु जो भी उपस्थित थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी गोस्वामी दास और लोग भी सब उपस्थित थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी उसमें उपस्थित थे, उनके पास में आए, उनके चरणों में गिरे और आदेश मांगा अब आप कृपा करें जे आप लोगों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनकी लीलाएं हमारे हृदय में स्फूर्ति हो और मैं उनका ग्रंथन करूं। गोपाल भट्ट जी ने कहा मैं तुम्हें आदेश दूंगा किंतु एक शर्त है, हमारे जीवन के अंतर्गत और हमारी भक्ता का कोई वर्णन करना, मेरे प्रेम में विवश हो सके श्री राधारमण जी स्वयं प्रकट हुए हैं और सब जो महाप्रभु की कृपाएं हमारे ऊपर में हुई हैं इसका कहीं उल्लेख मत करना, नहीं तो मैं अपमान से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे महापुरुष महाप्रभु जी की सब प्रकार से कृपा प्राप्त और उनको मैंने मना किया जैसे आप कृपा प्रयत्न मैं आपका आदेश पालन करने की भरसक चेष्टा। इसी कारण से गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रभुखानंद सरस्वती इत्यादि जी का या और कुछ जो हमारे महापुरुष लोग हो गए हैं लोकनाथ दास गोस्वामी का तो गर्भ गोस्वामी का ये बड़े दीन ही होकर के तिना पति सुनिए न करो सही सुनता अमानिना मान देना ऐसे ये कीर्तन करते थे भजन करते थे। जिनको स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़ देना सहज है किंतु प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा कठिन मुश्किल है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी ऐसा बताया क्या वो प्रतिष्ठा का भ्रष्ट सपचरमणि मेघ होती ये तो पता होती भ्रष्ट चंडाली जब तक हमारे हृदय में उदित रहेगी नित्य करेगी तब तक भक्ति सुकुमला प्रति कभी भी हमारे हृदय में प्रकट नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ने की पहले आवश्यकता है। तब प्रारंभ होगा भाई जब तक लौकिक अभिमान किसी प्रकार का रहेगा तब तक नहीं, सब प्रकार के योग्यता उसमें रहने पर भी सब प्रकार की उनमें योग्यता है सब प्रकार से वो सर्वोत्तम है फिर भी उनमें तिनाद भी सुनी तवी सुनी अमानी और मानस यह भक्ति का ये सहचर है जिसमें शुद्धा भक्ति रहेगी ये गुण अपने आप रहे ये गुण रहेंगे तभी ये हरिनाम संकीर्तन की स्तुति ऐसे ये सब हमारे महाजन होते हैं ये लोग हमारे हम लोगों के ऊपर में, सब लोगों के ऊपर में कृपा करें। सचमुच में हम लोग थी ऐसे पुरुष, सब प्रकार का दंभ अभिमान ये सब दूर, शुद्धा भक्ति में महाप्रभु जी की ती हुई भक्ति में हम लोगों का अनुराग। तो वो इस श्लोक में बतला रहे ये देवी दीप का प्रश्न है। अस्मतम फलमितम गोपियां परोक्षम कृष्ण, कृष्ण के बंसी वादन का परोक्ष रूप में, परोक्ष रूप मैंने अवहित का अवलंबन का कहा। श्रीमद् भागवत ने गोपियों को पर किया के रूप में ग्रहण किया। गोपियां अपने इस पूर्व राग में किसी को यह नहीं बतलाना चाहती कृष्ण हमारे अत्यंत प्रियतम हैं, उनसे मेरा प्रेम हो गया है, उनकी नजर लग गई है, हम उनकी हो गई, ये बतलाना नहीं चाहती। यहां तक कि अपनी कृषि क्रिया से भी किसी भी बात से किसी प्रकार से इसको प्रकट नहीं करना चाहती। जब गुरुजन लोग इसको फांप लें और हमारे ऊपर में ताना कसें वो नहीं चाहती, इसलिए सब प्रकार से अभी तक अपने हृदय में इन भावों को पोषण करती थी। किंतु आज कृष्ण गोचार चले गए करने सखाओं के साथ में, भाव नेत्र से देख रही है, घर में बैठी बैठी गोपियों की कोटि कोटि जूठे हैं, स्वजाति आशय स्निग्ध जिसका जिससे मेल है, जिसे अपने तरह का ठीक समान सजातीय सेवा वासना है कृष्ण के प्रति, उनका एक एक दल घर के कोने में, घर के कहीं गुप्त स्थान पर लिखकर और कृष्ण के बंसी वादन की, कृष्ण की चर्चा चल रही है। गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं किंतु इसको छिपाती कोई फांस में कोई न जान सके, इसलिए परोक्ष रूप में अहिथावलंबन करके किस इस रूप में उसका वर्णन कर रही है कि ये प्रकट न हो जाए कि हम लोग कृष्ण को प्यार करते हैं। भक्ति को भी ऐसे ही गोवन रखने की जरूरत है। मैं भक्त हो गया, जहां यह भाव आया भक्ति का अभिमान हुआ तो भक्ति देवी अंतर्हित हो जाएगी, कर तो उनकी भांति गोपियां उनको कृष्ण की लीला कथाओं को, कृष्ण के वंशी स्वर को, निनाद की महिमा का वर्णन करते वो पागल हो गई और उसके साथ ही साथ में कृष्ण की के रूप इत्यादि की भी स्फूर्ति उनके हृदय में हो गई। वे
विवश होकर के कारण आंखों का भी फल है।
क्या फल है? न परम विधान, आंखों का कोई इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा फल है हम नहीं जानते। कृष्ण वो चारण करने के लिए भाव की स्फूर्ति उनके हृदय में हो रही है, वो गोचारण में नहीं गई है, वो घर में बैठी दूसरी गोपियों से बात कर रहे हैं और दूसरी कोई कह रही है सखी यहीं से देख रहे हैं, मानो सब उनकी गोचारण कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंसी बाद में इत्यादि कर रहे हैं, कैसे उनके आंखों की भंगी हो रही है, भूख भंगी इत्यादि वहीं से देख रहे सखी। हम नहीं जानती हैं कि आंखों का फल किसे दूसरा क्या हो सकता है। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, सब सखाओं के द्वारा प्रवेशित है, कोटि कोटि गायों के समूह को लेकर, हेमपालों को लेकर गोचारण करने के लिए गए, एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, गाय घर घर विदर रही है। कहते हैं बड़े प्रेम से कृष्ण जी कथा धीरे 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 चलते, कहीं दर दर चलती हैं तो बंसी के द्वारा इनको मोड़ लेते हैं, नीरी नीरी पानी पिलाना है तो कहते हैं नीरी नीरी, पानी पी करते जब चलती हैं इधर तो कहते हैं तीरी तीरी, उनके शब्द बदले में गाय सब समझती हैं। जो तो गाय का भाग नहीं है, बेटी रिचाए गाय है, कृष्ण का पालन कर रहे हैं, वो सब कुछ जानती है, शिव में तत्व है, सचिदानंद है, जब किंचित दृढ़ बोल मती कर मुखम गोस्ते समस्तम निकट सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम पर शास्त्रे देव मुहु मुहु निशंकितम ज्ञात्या ब्रह्मा देव विशस्त्यंत तो सर्वम नया का कुछ भी फिर लता बुलना या कभी बिच्छू सा सभी सच्चिदानंद और कृष्ण लीला के अनुकूल है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे अनुकूल है। राधा जी को तीव्र मान होगा किसी कारण से हेतु करे आज मान का उत्सव नहीं हो रहा है, बहुत उन्होंने अन्न विनय किया किंतु आज का तो ऐसा मान था कि करे दे राधा जी श्रीमती जी मुख मोड़ लिया और वहां से चल गए, सखियों के मनाने पर भी आज मेरी मैं थोड़ी देर जब आगे बढ़ी एक कृष्ण शब्द तावड़ा कर उनको देख करके और ऐसे ही फंस गया रास्ता में एकदम खड़ा और ऐसे फंस फंस गया देखते एकदम से मान लगे कहा मुझे आए लौटी और लौटी आकर के कृष्ण की गोदी में गिर पड़ी जिसकी कृष्ण कल्पना नहीं करते। लीलानुकूलम परम सभी सच्चिदानंद है। इस तरह से जब सांप और बिच्छू की तो ऐसी तो तीन लता गुरुओं की तो बात है, तो इसलिए गाय सब समझती है कोटि कोटि ज्ञान गोमों की समूह को लेकर के कृष्ण चल रहे। अरे नौ लाख तो गाय ग्यारह लाख हमारे विश्वभानु महाराज जी ऐसे ऐसे सब कोटि कोटि गाय को लेकर के उनको लेकर के एक पन से दूसरे पन में ले जाना सहज काम नहीं, किंतु कृष्ण अपने बंसी के रस से और अपने मधुर शब्दों से उनको वशीभूत किए हुए एक पन से दूसरे पन में प्रवेश करा रहे हैं। साथ में कौन है? असंख्य वो बालखन के सखा लोग हैं, वयस से वैश्यों से भी देख फिर वक्तम जरा वक्तम प्रदेश सुखो योगम देव दुष्ट और उस समय कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं, ये बंसी बंसी के छिद्र को भर रहे हैं। पहले श्लोक में बंसी है लकड़ी अंतासार है तो बलदेव के ही बंसी बने हैं किंतु नरलीला ने उसको अंतासार, यदि कोई अंतासार शून्य रहेगा महान उत्तम भक्तों का भी संग पार करके वो वैसा का वैसा ही नीरस बना रहेगा। कृष्ण अपने मधुर अध्यात्मिक कोष में भर रहे हैं और वो विश्व को उन्मत्त कर रही है, किंतु स्वयं वही बंसी, वही बांस की। इसलिए अंतर सात शून्य नहीं होकर के कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम भाव में है, गोपियों का अनुगमन साधारण ये बंसी के द्वारा और बिरिनी जुस्तम जुस्तम बन जाए, देख करके नहीं, वो तो पहले से बदला है ना, आंखों का है। सफलता वही है जो इनके रूप को देखें, कब कृष्ण को चारण करने के लिए जा रहे हैं, सखाओं से फिरे हुए हैं, गायें चल रही हैं और अनुदेव जुस्तम ब्रजेश सुतयो, यहां पर कृष्ण और बलदेव जी जाए। बलदेव जी का नाम लेने की आवश्यकता यहां नहीं थी, किंतु भाव गोपन करने के लिए कहीं ये प्रकट न हो जाए कि हम लोग कृष्ण पर अनुरक्त हैं, इसलिए और इच्छा के लिए उन्होंने बलदेव जी को भी दी। कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं जो देवीवादन करते हुए जा रहे हैं और सखाओं के तरफ में कटाक्ष से बंसी लेते हुए मुस्कुराते हुए और उनके तरफ में कटाक्ष प्राप्त करते हुए चले जाए। यदि किसी ने यह देखा ही नहीं, नितिंतम विशेष रूप से निशेष रूप से पीतम, यदि इसका किसी ने पान किया, कैसे आंखों के द्वारा कभी कान के द्वारा पान करते हैं, कभी मुख के द्वारा पान करते हैं, तो इस तरह से नितिंतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम देखते हैं। ये देखा उनका जीवन दूसरा इसमें अर्थ करते हैं प्रजेश सुतयो, कौन देख रहा है गोपियां, बलदेव जी को किस रूप में देखती हैं, जेठ के रूप में देखती है, गुरु बुद्धि से उनको प्रणाम करती है और वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं, दूर से अपने नेत्रों से उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहां पर गोपियां जो उनको देख रही हैं, अनुदेव जुस्तम प्रजेश सुतयो, प्रजेश जो दो है कृष्ण और राम, उनमें जो पीछे अनु पीछे बेनु जुस्तम बेनु का जो आस्वादन करते हुए जो जा रहे हैं, पीछे पीछे जो है आगे आगे बंदे प्रभु जी जा रहे हैं और पीछे कौन चल रहे हैं, कृष्ण जो अपने अधर पर मुरली दिए थे, इनका जो कटाक्ष है मोक्ष, यदि नहीं देखा जीवन वृथा है, आंखें वृथा है, मोर पंख की खांदी, चलो सखी जल्दी से चले देखे, इसमें प्रतीक्षा होती है, चलो जल्दी से देखे, देखें पीते पिए अधर अमृत पिए, भाई ये खबरदार नाम मत लो, अभी सुन रही होंगी हमारी ससुर सास ये सब लोग होंगे, गुरुजन लोग सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे, मत कहो भाई, क्या करेंगी करेंगी क्या, हमारी नंदन भी तो देखती हैं सुनती हैं, जितनी बाधाएं हम लोगों के लिए नहीं है वो क्यों सुनती हैं, चलो जो होगा तो देखेंगे, तो चलो दूर से देखेंगे, किंतु नहीं पीतम हमारे लिए संभव नहीं, पीना हमारे लिए संभव है, अरे चलो तो देखो जो क्या होता है, उस बंसी ने नाग का ऐसा ही प्रभाव है, कृष्ण के मुखारविंद का ऐसा ही प्रभाव है, कांचन थे पदायत कल्प देवी, कल्प दायक देवी, इससे गो द्वीज द्रुम मृग कुलकांड विक्रम सभी अपने अपने धर्मों को छोड़ करके विपरीत धर्म का आचरण करने लगते हैं, जमुना जी जो चलती है वो स्थिर हो जाती है, हवा स्थिर हो जाती है, चलने वाले जो है वो जड़ हो जाते हैं और जड़ भी चेतन का व्यवहार,
उनकी बंसी की निनाद और उनका रूप सुन करके हमारी तो बात ही क्या है, पैरों से अश्रु धारा होने लगती है। पक्षी जो चलने में आए हैं स्थिर होकर के मौन होकर होकर के रहता है, सब चीज की धारा ही बदल जाती है। तो हमारी यह धारा जो बदल गई, हमारा जो भाव बदल गया है अपने पक्षियों को छोड़कर के जाने जा रहे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं वहां पर हो सकता है। तो वही यहां पर ये कहा है, चलो तो सुनो तो देखो तो, जो कराना है वो बच्ची करा लेगी। इसलिए यहां पर कहता है जो पीछे जो जा रहे हैं कृष्णचंद्र अधरम पर मुख ले लिए, उसमें अपने अधरम मत को लगा करके, तो उस समय में कृष्ण के आंखों से जो उनका कटाक्ष मोक्ष हो रहा है जो देख रहे हैं, इसको जो दर्शन किया उसी की यथार्थ में सफल है। यहां पर एक विचार और है, ब्रजेश सुतयो बलदेव जी के लिए ये कहा गया कहां तक संगत है, अरे हां संगत, यद्यपि कृष्ण के लिए तो यह कहा जाता है जिस समय में वो मथुरा में आदि थे तो ये प्रकट हुए संत चक्रकदा पत्नी से शत्रुपुरी, उसी समय में गोकुल में जसोदा मैया के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए, एक ही काल पीछे से जो माया जी ने जन्म ग्रहण, जिस समय में वसुदेव जी ने और देवकी जी ने प्रार्थना की आप बच्चे बन जाए शिशु बहु, साथ ही साथ में गोकुल वाले कृष्ण यहां पर पहुंच गए और अपने रूप में उनको मिला गया, उसी को बसुदेव जी वहां पर रखा। श्रीमद् भागवत में ऐसे हजारों प्रसंग हैं जिसे ये प्रतीत होता है कि परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने जदा कदा कहीं कृष्ण को वासुदेव पुत्र कहा है, वसुदेव पुत्र कहा है, देवकी नंदन इत्यादि। किंतु अपने मन का भाव उनका यही है कि वो नंद नंद है यशोदा नंद, इसलिए जन्म के प्रसंग के बाद में नंद के घर में जब उत्सव हुआ वहां पर जीवनी आत्मज उत्पन्ने बदलाया, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता बाबु महामना, नंद बाबा बड़े प्रसंग हुए उनका हम संस्कार कराया। क्या जात कर्म संस्कार, जात कर्म किसको कहते हैं, नाड़ी छेदन इत्यादि का नाम जात कर्म। कृष्ण के यहां नर्वत लीला हुई, वहां पर भगवत तत्व नारायण इत्यादि बात दे कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जन्म की लीला वहां पर मथुरा में, किंतु यहां पर जन्म की लीला है केवल यही नहीं। जब कंस ने उस लड़की को पकड़ा है और पत्थर पर पटकना चाहा, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में ऊपर उड़ गई और कहा दे रही कंस तेरे मारने वाला तो अनंत कहीं प्रकट हो गया। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अदृश्यत अनुजा विष्णु, विष्णु की जो अनुजा है वो वहां पर अदृश्य हो गई। यहां पर विष्णु माने कृष्ण, कृष्ण की अनुजा कौन सी, मथुरा में कौन सी उनकी अनुजा पैदा हुई, यदि बात सुभद्रा की हुई तो बहुत पीछे की बात है, वो तो साथ ही साथ जिसको वो ले आए थे कहां से, मथुरा से तो लाए नहीं, वो तो गोकुल से ले आए थे उसे, तो अनुजा कैसे हो गई यदि कृष्ण की वो बहन नहीं है तो। इसलिए वो कृष्ण की बहन है, इसलिए कृष्ण नंद बाबा के नौमुद्ध थे अप्रबु से पशुपांग जाय, पशु को अंग जाय पशु पशुओं को पालन करने वाले नंद बाबा के ये पुत्र है। ये ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के गुरु है ना, ये झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के मन की बात नहीं कहेंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया जयते अधिकम जन्म ना प्रज, मथुरा में नहीं, कहां जन्म हुआ उनका, जन्म ना प्रज, ब्रज में जन्म से। आज ये बैकुंठपुरी क्या द्वारकापुरी और मथुरा इत्यादि से ही अधिक ये सुशोभित हो रही है, जहां पर लक्ष्मी कुंजों में छपते। इसलिए कृष्ण का यहां पर गोकुल में जन्म तो अभिसंवाद सत्य है, इसमें नम नचु का कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि अंत में उन्होंने कह भी दिया हाँ देवकी जन्म पादो, ये बात है देव की जन्म। उन्होंने वो जगत को के अधर्म इत्यादि को दूर करने के लिए आती, ये भी बात है, इसलिए नहीं आए, वो तो बुद्धि प्रेम आस्वादन करने के लिए आए, भक्त विनोदन, भक्त के विनोद के लिए आए, भक्तों के विनोद क्रीड़ा के लिए आए। और श्लोक का संघात अपने महाविष्णु विष्णु के अवतारों के द्वारा भी ये युग धर्म परिवर्तन इत्यादि सब ये कर सकते थे, इसलिए इसके लिए नहीं आए। इसलिए देवकी जन्म बाद ये बात स्वरूप है कहा जाता है, किंतु यथार्थ में बलदेव जी के लिए यहां पर प्रजेश सुतयो, प्रजेश के नंद नंद के ये रूप इस रूप में कि ये हमारे वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, जिसमें वसुदेव जी कर चुकाने के लिए कंस के पास में गए, नंद बाबा गए वसुदेव, वहां पर वसुदेव जी से मिले, आया ठीक है तुम आए जल्दी से चले जाओ। उस समय मैं पूछा था उन्होंने हमारे बस देव जी ने नंद बाबा से, देखो हमारा एक लड़का है, कृष्ण के लिए नहीं कहा मैं तो गड़बड़ हो जाके, कृष्ण के लिए नहीं कहा जी, हमारा एक लड़का प्रभु के साथ वहां पर गया है, तुम जन्म से हुआ उसका जन्म भी तुम्हारे ही हुआ, वो हमको कभी पिता के रूप में उसने देखा नहीं, आखिर को पिता और जसोदा को ही मैया याद रही को मैया जाता है, वो जाता कि मैं नदी का पुत्र और आखिर से पलकों के समान जैसे आंखों की रक्षा करते हैं इस प्रकार से आप उसका पालन पोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जब कृष्ण के कहने से बलदेव प्रभु जी, बलदेव जी ने कहा कृष्ण को जो चलो हम दोनों भाई चलें, अरे एक बार तो ब्रज में चले, ब्रज को तो हम बेच करके नहीं आए हैं, और ब्रज में चले, तुम ब्रज को छोड़ करके आए और प्रतिज्ञा करा, प्रतिज्ञा करके आए कि कल ही हम लौटेंगे, कल नहीं तो परसों जरूर लौट आए, कि तुम नहीं लौटे, अच्छा ठीक है तुम नहीं लौटे, एक दिन के लिए तो जा सकते हो, चलो एक बार तुम्हें कृष्ण नहीं आए, उद्धव जी को देता अपनी पत्री दे दी संदेश दिया, बलदेव जी ने कहा रूनी मैया ने भी कहा गोपियों को संदेश के द्वारा दूसरे आदमी के पत्री के द्वारा तुम सांत्वना देना चाहते हो, जब तक तुम खुद नहीं जाओगे तब तक उनकी सांत्वना नहीं होगी। कृष्ण रोने लग गए, कहे तुम भूत हो बलदेव, भूत हो रोने क्यों लगे, चलने दे क्या, कृष्ण इसका उत्तर कुछ नहीं दे सके, उनकी तीस उनके हृदय में लिए ये किसी से कहीं भी मिल जाए। फिर बलदेव जी ने उनको कहा चल अब चलो, उद्धव जी से संतना नहीं हुई तुम चलो, कि फिर नहीं आए तो बलदेव प्रभु जी कहे तुम नहीं जाते तो मैं खुद जाता, तो वहां पर उन्होंने बताया पीतरों मैंने दोनों को अभिवादन किया है, माता और पिता को, माता पिता के रूप में नंद बाबा यशोदा जी का अभिवादन किया है, श्रीमद् भागवत का ऐसा उल्लेख, क्यों इस इसलिए कि बलदेव प्रभु जी नंद बाबा से कह रहे हैं, जिसमें मथुरा में ये गए थे कर देने के लिए, उसी समय में बलदेव जी का कंस मारा गया है, उसका संस्कार भी कर दिया गया। नंद बाबा वहीं पर पड़ाव डाले बैठे हैं अंबिका, सोच रहे अब कृष्ण आएगा बलदेव। बहुत विलंब हो गया, एक दिन नहीं दूसरे दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन शाम को जब अंधकार हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए आए। और 15 बस शाम हो गई, अंधकार हो गया, अपलक नेत्र से देख रहे हैं। अजी वसुदेव तो भूल गया, जदुवंशी लोग भूल गए, कृष्ण और बलदेव भी उन्हें भूलते। गला रूप होया, उसी समय में देखा जी कृष्ण बलदेव मानो छिप करके आ रहे, बाबा का आशा रूप देख करके उनके दाहिने और बाएं जंगे पर बैठ गए। तुम भी भूल गए और तुम भी नहीं आ रहे, क्या मथुरा वृंदावन लौटने की इच्छा नहीं? उस समय में बलदेव जी कह रहे हैं, मैं कृष्ण को और आपको छोड़कर के कदापि मथुरा में नहीं जाता।